Hey guys, शिप ब्रांड का 23 एपिसोड है और आप सभी का स्वागत है शिप ब्रांड में। महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई बात या कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी परम पराक्रम पर भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने ज्ञानी पुरुष के भांति रुद्रगणों के साथ बुद्धि युद्ध क्यों किया? करुणा निधि, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है, अब कृपा करके मेरे संशय को नष्ट कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दगीचि मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दगीचि ने क्यों श्राप दिया ये सुनो। प्राचीन काल में शिव नाम से प्रसिद्ध महातेजस्वी राजा हो गए थे। वे एक महातेजस्वी राजा थे, महाप्रभावशाली मुनीश्वर दगीच के मित्र थे। देर काल की तपस्या से प्रसन्न हो शिव और दगीच में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोगों में महान नर्तकारी रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद के वेद में विद्वान शिव भक्त गीच कहते हैं कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुनि दगीच की बात सुनकर धन वैभव से मद से मोहित हुए राजा शुभ ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले, राजा इंद्र अति 8 लोकपालों में से कोई रूप को धारण करता है, वे समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक है एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाले श्रुति भी कहती हैं कि राजा सर्वदेवमय है। उन्हें इस श्रुति के कथन को सुनकर सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ, इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चाव्य नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वदा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा छुप का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दगीच को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दगीच छुप के मस्तिष्क पर बाएं मुख से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दगीच को काट डाला। उस कब से आहत हो भृगुवंशी दगीच पृथ्वी पर गिर खड़े। भार्व वंश त्रर दगीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दगीच के शरीर को अपने शुभ से काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दगीच के अंगों को पूर्ववत जोड़ शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विधा के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा, शुक्र बोले, तात दगीच में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजा महेश, ये भगवान त्र्यंबकम का आराधन करते हैं। त्र्यंबकम का अर्थ तीनों लोगों के प्रताप प्रभावशाली शिव है। वे भगवान सूर्य सोम और अग्नि तीनों मंडल के पिता हैं। सत्व रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों तत्वों के आह्वानीय ग्रह पार्थ और दक्षिणाग्रह हैं। इन तीनों अग्रियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी जल एवं तेज इन तीनों मूर्ति भूतों के त्रिभुज के त्रिधाभूत सबके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक के मंत्र का प्रथम चरण इसकी व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे कि फूलों में उत्तम सुगंध होती है, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान देवों में और गणों में उनके प्रकाश सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। ये सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव ने भगवान शिव की जिस तरह से व्याख्या हुई वो आप सुने। आप सभी का शिव पुराण में आने के लिए धन्यवाद। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुःश्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है। तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का, इंद्रों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की बात करते हैं। उन दोनों चरणों का जो रूप है वो है उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षेर मान्यताम्। अतः प्रभु जैसे खरबूजा एक पक जाने पर लता बंध से छूट जाता है, उसी तरह से मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, अमृत पद मोक्ष के पृथक ना हो जाऊं। ये रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वास्थ्य से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। और इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वार होकर था ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता से बांधने में लगा रहता है। पक जाने पर स्वयं इस बंधन से मुक्त कर देता है। ये मंत्र संजीवनी मंत्र है, जो सबसे मत में सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्र किए हुए जल को दिन और रात में पी जाओ तथा तो शिव विग्रह से समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। ध्यान साधि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। ये सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उसका चिंतन करके मंत्र जाप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उन मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। मृत्यु मोक्ष, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उसने ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तिष्क को सींचता है, अन्य दो हाथों से दो लगाड़े लिए अपनी गोद में रखे हुए तथा तो शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करके कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर जलते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा तो जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरजा नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन और चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तान मुनि श्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। इनकी बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रसन्न से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शिव ने दधीच के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने चवन्य कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का ये वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकल से बोले। दधीच ने कहा, आदेव देवादिदेव मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी वज्र हो जाए, मेरा कोई भी वध ना कर सके और मैं सर्वस्त्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। दधीच का वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मग्न हो शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव से अवधित वज्र माया अस्थि और अधीनता पाकर दधीच ने राजेंद्र शिव के मस्तिष्क पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने क्रोधित करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व से भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वे वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। इसी ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवध्य अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़ कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंदी की आराधना आरंभ करी। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा में गणध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की और दिव्य दृष्टि से जनार्दन देव का दर्शन करके उस गणध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय दग्नों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्नचित उस अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन स्तवन करके राजा ने भक्तिभाव से उनकी ओर देखा तथा जनार्दन के चरणों में मस्तिष्क रखकर प्रणाम करके पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीच नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण जो धर्म की ज्ञाता है, उनके हृदय में विनय का भाव है। ये पहले मेरे मित्र थे, इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके ये उन्हीं सम कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अष्ट शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवधे हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तिष्क पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता, हरे तुम मृत्युंजय उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीच की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी की अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा छुट से बोले, राजेंद्र ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है, भूमते विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूंगा तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र दधीच की श्राप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश शिव से मेरी पराजय होगी तो फिर मेरा उत्थान भी होगा महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक और प्रसन्न हो के वहां पे ठहर गए। तो इस तरह से इस तरह से जो दधीच थे उन्होंने किस प्रकार श्राप दिया और कृष्ण का युद्ध में विष्णु जी द्वारा वीरभद्र से युद्ध किया गया दक्ष के लिए, तो ये शिव पुराण का 22वां एपिसोड जो चल रहा है। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हो तो बस मुझे एक बार कमेंट कर दें। भक्तवत्सल, भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए। वहां उन जगतगुरु श्री हरि ने भक्ति शिरोमण ब्राह्मण श्री दधीच को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्दत हो उनसे ये बात कही। भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म महर्षि दगीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, तुम मुझे वो दो। शिव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दगीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं? मुझे ज्ञात हो गया है आप शिव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पाप हारे श्री हरि विष्णु हैं। ये ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्टि बुद्धि वाले राजा शिव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी वत्सल भाव भक्त वत्सलता को मैं भी जानता हूँ, यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए, भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर के आराधना में लगा रहता हूँ, ऐसी दशा में यदि मुझे किसी को भी भय हो तो वे आपसे उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इस संसार में किसी देव या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दघीच, तुम्हारा भय सर्वदा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शिव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव शिरोमणि महामुनि दघीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले, मैं देवाधिदेव पिनाकपाणि भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी और से किंच मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की, देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अष्टकुतित हो गए। तदांतर भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अत्यंत विष्णु मूर्ति प्रकट की, ये देखकर चवन्य कुमार वहां जगी जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा, दगीच बोले, महाबलो माया को त्याग दीजिए, विचार करने से प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्र दुर्विज्ञों वस्तुओं को जान लिया है, आप मुझसे अपने सही संपूर्ण जगत को देखें, निरालस्य होकर मुझसे ब्रह्मा एवं रुद्र भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसे कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले चवन्य कुमार और दगीच मुनि ने अपनी देह में से समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा, इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां पहुंचे। मैंने निशेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को यह तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दगीची को परास्त नहीं किया, श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दगीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणे, मुझ पर प्रसन्न हुई है, परमेश्वर आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शुभ की बात सुनकर तपस्या के निधि ब्राह्मण दगीच ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दगीच ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह का श्राप दे शुभ की ओर देखकर राजा और राजाओं के पूजनीय दुर्ज श्रेष्ठ दगीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दगीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दगीच को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वे स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का समयुज प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में शुभ और दगीच के विवाद की कथा सुनाई है, फिर भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा विष्णु को ही श्राप प्राप्त हुआ उनका भी वर्णन किया, जो छोभ और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, वह अमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता, वह निश्चय ही विजय विजयी होता है। मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दें, मुझे सच में नहीं पता कि कौन कौन है। विधाता महाप्राण, आप शिव तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। आपने बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। तातवीर वीरभद्र दब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जितने अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयं शंभु को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया, फिर अपने विशेष केश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्याग्र हो चित्त में बड़ी चिंता करने लगा। मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया, इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार से शस्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे कहा। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी ये यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवताओं का मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। देव 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 देव, रमानाथ देव सुखदायक, विष्णु, हम देवताओं और मुनि निश्चित ही आपकी शरण में आए हैं। वही ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष में कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वे अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो, भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जब भगवान के कुपित होने पर सारा जगत सारा नष्ट हो जाता है तथा तो जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसे करने में भगवान शंकर को संतोष होगा। ये मैंने सच्ची बात कही है ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देव आदि सहित मुझ ब्राह्मण को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि देवगण के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योगसिद्ध महात्मा पुरुष उनका भलीभांति सेवन करते हैं। तो वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा है। उस पुरी के पास ही सौगंधित वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार से वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वज्ञ सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलका नंदा, ये दोनों अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यशराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वनों के पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योज तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप उसे तो सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुष को ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। यह दिव्य वृक्ष भगवान शंभू का योग स्थल है, योगियों के द्वारा सेव्य परम उत्तम है। प्रभु शूद के आश्रयभूत और महायोगमय तटवृक्ष के नीचे भगवान विष्णु तथा सब देवताओं ने भगवान शंकर विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादिक, जो सदस्य भक्त में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़े प्रसन्नता से उस उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो गुहा की राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंब जी के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते थे। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार से सुहत हैं। नारद उस दिन एक कुशान पर बैठे थे और सब संतों को सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न कहने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाई जांघ पर और बायां हाथ अपने घुटने पर रख कलाइयों की रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तारक मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे लोगों की उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं सिद्धो गणनीधो और महर्षियों से नमस्कार तथा स्वयं भी श्री विष्णु एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव ने श्री हरि से आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। सो आप सभी का शिव पुराण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ॐ नमः शिवाय।